ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யுவர் அபவுட் டு லிசன் முண்டகோபனிஷத், பிரசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ சிவ் சரூப்ஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
பரம் பிரேமாஸ்பத் ஸ்ரோதா ஸ்வரூப் மே பகவான் பரமாத்மா நே சாரி சிருஷ்டி பனாயி. लेकिन यहां मुंडक उपनिषद में अक्षर तत्व से मानी गई सृष्टि बनाई बनाई जरूर, लेकिन सृष्टि किस विधान से बनाई? क्योंकि आत्मना आकाश संभूता एक जगह आता है और ब्रह्मा जी ने बनाई एक जगह आता है और विराट पुरुष से बनी एक जगह आता है। इस जगह जगह सृष्टि का क्या मतलब? इसका मतलब सृष्टि है ही नहीं। सृष्टि अगर होती तो एक ही प्रकार से उपनिषद कहते। सृष्टि है नहीं, दिखती है। जैसे रस्सी में सांप दिखता है, आकाश दिखता है, घड़ा ले जाओ कहीं तो उसमें घटाकाश जाता है, चलता फिरता दिखाई देता है। तो चलता फिर तो दिखाई देता है लेकिन जाता नहीं है। आकाश तो वहां पहले से मौजूद है। यदि होता न होता तो जाता कैसे, आता कैसे? इसलिए महाकाश जाता नहीं है लेकिन जाता हुआ दिखाई देता है। ऐसे ही सृष्टि है, आती जाती रहती है। वास्तव में परमात्मा है ज्यों का त्यों। अविकृत रूप से वल्लभाचार्य जी मानते हैं कि अविकृत परिणामी है। अविकृत परिणामी अगर है तो दूध से दही जैसे बनता है, फिर दही से दूध नहीं बनेगा। तो विकार रहित है भगवान, ये तो मानते हैं कि विकारी नहीं है। विकार यदि होता तो हमेशा को होता, निर्विकार कैसे रहता? तो विकारी परमात्मा नहीं है, अविकृत परिणामवादी है, परिणमित हो गया है, बदल गया है। तो भगवान हर हालत में, बल्लभाचार्य जी जितने द्वैतवादी हैं सब मानते हैं कि भगवान ही रूप धारण करके जगत रूप में नाम रूपाणी व्याकरवाणी उदाहरण देते हैं, नाम रूप में बदल गया। तो बदल जाता अगर तो वो बदला है तो परिणामी होता, दूध से दही, दही से दूध। तो दही से दूध जैसे नहीं बनता है वैसे वो अविकृत परिणामी मानते हैं। परमात्मा ज्यों का त्यों जगत में है और भगवान देव मां जी राम चरण रति विगत मोह मद क्रोध निज प्रभु मैं देख जगत। अपने प्रभु मैं जगत को देखते हैं, अपने अपने भगवान, किसी राम के, किसी के कृष्ण, कोई तो राम जी नाम रूप में बदल गए हैं, ऐसा विश्वास है उनका। ब्रह्मवादी भी यही कहते हैं कि माया से संसार बना है, परमात्मा तो ज्यों का त्यों सर्वम खलुदम ब्रह्म, सब ब्रह्म है, परमात्मा ने माया से बना लिया। अब जैसे बना हो बैराज सृष्टि नहीं है, परमात्मा है। द्वैतवादी में मानते हैं चारवाक द्रव्य प्रधान है और काल प्रधान बौद्ध है, देश प्रधान जैन है, लेकिन न्याय निमित्त मानता है ईश्वर को। कहता है घड़ा हमने नहीं बनाया, किसी ने कुम्हार ने बनाया जरूर है। इतना अच्छा, इतना जगत चमत्कारी बनाया किसी ने जरूर है, कोई न कोई है जरूर। निमित्त मानते हैं ईश्वर को न्याय वैश्य जी। सांख मानता है प्रगत पुरुष पंगुवंदन न्याय। एक लंगड़ा है और एक अंधी है प्रकृति, प्रकृति जड़ है, उनके समझ में नित्य है और सत्य है, नित्य और सत्य है। तो प्रकृति पुरुष मिलकर के जैसे पंगु कोई होए और काय हमारे कंधे पे आ जाओ, तो कंधे पे प्रकृति ले ली और प्रकृति ने बना दिया सब, प्रकृति माया मैं बन गया। ये भी ब्रह्मवादी माया से मानते हैं, वो प्रकृति से मानते हैं, प्रकृति अपने आप बना लेती है, सब सृष्टि कर लेती है। तो कोई तो सृष्टि प्रकृति से मानते हैं, कोई जीव प्रधान, कोई काल प्रधान, कोई अलग अलग मानते हैं, लेकिन सृष्टि वास्तव में है नहीं, है तो परमात्मा लेकिन दिखता नहीं है, मैं परमात्मा दिखता नहीं नाम रूप में। अगर नाम रूप में परमात्मा दिखने लगे तो पेड़ को भी नमस्कार करने लगो तो आ जाए गो खरा शुभत, प्रणाम करना चाहिए, प्रणवेद भूमो दंडवत, दंडा कर जाना चाहिए। आता है रामकृष्ण परमहंस, पेड़ को भी भगवान मानते थे, तो पेड़ में भी, पौधों में भी, गधे में भी, ऊंट में भी, सब में भगवान है। ये दृष्टि अगर खुल जाए, सृष्टि में सब भगवान है, नाम रूप में केवल फर्क है, तो फिर काम बन जाए, तो द्वेष खत्म हो जाए, राग खत्म हो जाए। राग द्वेष जो होता है इसीलिए होता है, राग द्वेष असल में किसी के प्रति राग, किसी के प्रति द्वेष होता है तो इसीलिए होता है। ये सगे भैया हैं, मधु और कैटव हैं, तो किसी के प्रति राग तो द्वेष भी होगा किसी के प्रति, क्योंकि राग अगर होगा तो द्वेष भी किसी के प्रति होगा, सगे भैया हैं। तो अगर परमात्मा सब सृष्टि में दिखने लगे, सब सृष्टि परमात्मा की है, नाम रूप में, नाम में रूप में परमात्मा ही दिखता है, परमात्मा है, ये तो बात आप मान ली। परमात्मा वो परमात्मा अपने से अभिन्न होना चाहिए, जैसे मैं नहीं हूं ये नहीं अभ्यास हो सकता, नाश भी नमे ये कैसे हो सकता, मैं नहीं हूं अब बोल कैसे रहे हो, तो मैं मालूम पड़ता हूं कि हूं, मालूम पड़ता हूं कि हूं, और अप्रिय नहीं हूं। अप्रिय माने अपने को प्यार नहीं करते हैं, ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो अपने प्रति प्रेम न करता हो, सभी प्रेम करते हैं, तो सभी करते हैं तो इसका मतलब ये निकला कि अप्रिय नहीं है तो आनंद रूप है, और चित मालूम पड़ता हो तो मालूम पड़ता है तो चिदानंद है और सत्य स्वरूप है, सत्यम ज्ञानवंतम ब्रह्म यही है। तो परमात्मा सब जगह दिखने लगे अगर तो दृष्टि खुल जाए, और दृष्टि सृष्टि है, दृष्टि न बदलो, सृष्टि न बदलो, दृष्टि बदल लो तो काम बन जाएगा। सृष्टि न बदलने की कोशिश करो, दृष्टि बदल लो, अपनी दृष्टि परमात्मा में है, निज प्रभु में देख ही जगत, प्रभु में देखो जगत को, ऐसे देखो जैसे भगवान है हमारा इस रूप में आया है। वो कौन थे एक नाथ जी, लंबकनाथ भले बने और लंबकनाथ, तो भूत में भी उन्होंने भगवान को देखा, ऐसे पेड़ पौधे में भूत प्रेत में भगवान को देखा जाए तो दृष्टि बदल, सृष्टि नहीं बदलनी पड़े, दृष्टि बदल जाए, दृष्टि बदल गई तो सृष्टि बदल जाएगी अपने आप। लोग कहने लगते हैं सर्दी बहुत है, कई बार कह जाएंगे गर्मी बहुत है, अरे सर्दी गर्मी जो कुछ है सिद्ध सिद्ध समूह भूतवा समुत्तम योग उच्चते, वो तो सर्दी होगी, सर्दी के दिनों में सर्दी होगी, गर्मी के दिनों में गर्मी होगी, उसमें क्या कहना। उसमें तो यही कहना है कि सर्दी गर्मी पड़ रही है, अच्छा है सिद्ध सिद्ध समूह भूतवा, सिद्ध कोई काम हो जाए असिद्ध हो जाए तो जय भगवान की। नाम रूप में सब में भगवान है, देखें कार्य सफलता में असफलता में सब में भगवान। भगवान को अगर दृष्टि खुल जाए तो राग द्वेष मिट जाए, राग द्वेष मिट जाए तो जीवपना मिट जाए, राग द्वेष अस्मिता वगैरह ये राग जीव की पहचान है। मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव ने सास रूपा, जीव अपना सास रूप प्राप्त कर ले तो यही स्वरूप उपलब्धि है, यही मुक्ति है। अन्यथा भाव छोड़ गए स्वरूपेण अवस्थिति मुक्ति, मुक्ति और क्या है, मरने पर मुक्ति मिलेगी ये किसने देखा है। तो अब आप स्वामी जी सुनिए, स्वामी जी का प्रवचन स्वाध्याय भी करते हैं और इस समय चौथे मंजिल में रहते हैं, जो कोई पढ़ना चाहे पढ़ भी सकता है, उनसे समय उनसे लेकर के पढ़ भी सकता है। जैसे हम स्वाध्याय हमने देखा कुछ लोग पढ़ते हैं तो संकोच न करें, पढ़ सकते हैं। ओम।
देखिए आज इस सृष्टि किस प्रकार से उत्पन्न होती है परमात्मा से, वो प्रथम खंड में मुंडक के प्रथम खंड में सातवें मंत्र में ये बात बताई जा रही है। पहले इसका इस मंत्र को श्रवण कर लीजिए, मैं बोलता हूं। ओ यथोर्ण नाभि सजते गृहणते च यथा पृथिव्या मोखधयः संभवन्ति यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि तथा अक्षरा संभवति हि विश्वम्। नारायण नारायण। अभी तक इसमें परमात्मा के संबंध में ये बात कही जा रही थी कि वो दृश्य नहीं है, दृष्टा है, क्योंकि जो दृश्य होगा वो दृष्टा नहीं हो सकता है। आंख के सामने जो चीज आएगी वो सब दिख जाएगी पर एक चीज नहीं दिखेगी। क्या नहीं दिखेगी? आंख नहीं दिखेगी। आंख से सब दिख जाएगा पर आंख नहीं दिखेगी। इसी प्रकार से ये दृष्टा है, दृष्टा, और इसी को साक्षी भी कहते हैं, है ना? मने साक्षी का मतलब होता है कि जो बिना किसी के सहयोग देख लेता हो। हमारी इंद्रियां हैं तो हमारी इंद्रियों को सूर्य के प्रकाश की जरूरत होती है, प्रकाश के सहयोग के बिना हमारी आंखें नहीं देखती। इसी प्रकार से प्रत्येक इंद्रियों के देवता होते हैं, उनके सहयोग से प्रत्येक इंद्रिय अपने अपने विषयों को ग्रहण करती है। लेकिन ये जो हमारी आंख है, ये हमारा साक्षी है, इसको किसी के सहयोग की जरूरत नहीं। साक्षात दृष्टि संज्ञायाम, ये देखिए आप, हम सोते हैं तब भी बिना किसी उपकरण के अपने सोने को जानते हैं, स्वप्न को जानते हैं और अपनी आंख की मंदता और तीव्रता को, अपने कान के बधिर और सुनने को हम जानते हैं, भी हमारी आंख ठीक से नहीं दिखती है, हमारी आंख से ठीक से नहीं दिखता है, इसको किसको मालूम पड़ता है? साक्षी को मालूम पड़ता है, सीधे प्रकाशित करता है। तो ये जैसे आंख है, सबको देख करके अपने को नहीं देख पाती है, क्योंकि आंख का स्वभाव देखना है, दिखना नहीं है। इसी प्रकार दृष्टा का स्वभाव देखना है, दिखना नहीं है, अर्थात किसी से दिखता नहीं है, देखता है। अपनी अपनी प्रकृति होती है, अपना अपना स्वभाव होता है। दुनिया की वस्तु दिखती है, दिख जाती है, पर देखने का काम नहीं करती है। तो ये बात आपको इस मंत्र में बताया गया था, और किसी इंद्रिय से गृहित भी नहीं होता है, उसका कोई गोत्र नहीं है, कोई कुल नहीं है, उसका कोई वर्ण नहीं है, वर्णन भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जाति आदि उसमें होती नहीं कुछ। उसके चक्षु और श्रोत्र नहीं है हमारी तरह, जैसे अपने पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए अपने को श्रोत्र चक्षु की जरूरत पड़ती है, श्रोत्र चक्षु मेन है। परमात्मा को इनके बिना भी सब कुछ दिखता सुनाई देता है। और तदपानिपादम, फिर कर्म इंद्रियों का भी निषेध करते हैं कि नारायण, जब वो फल देते होंगे किसी को तो टोकरी में भर के लाते होंगे, जैसे गीता में लिखा है ना, वहाम्यहम योग खेमम वहाम्यहम है। तो वो हाथ नहीं है, पैर नहीं है, बिना हाथ पैर के देते हैं। न देवाह दंडमादाया रक्षन्ति पशुपालवत, देवता लोग, परमात्मा लोग मनुष्य की रक्षा ऐसे नहीं करते हैं कि जैसे भेड़ चराने वाला भेड़ की रक्षा करता है, दंडा लेकर के चारों तरफ घेर करके रखता है, कहीं भेड़िया भेड़ों को उठाने ले जाओ। तो देवता हमारे को जब देते हैं, परमात्मा हमारे को जब देता है, तो वो दंड लेकर के या कोई हाथ से वस्तु लेकर के नहीं देते हैं। अच्छा, तो कैसे देते हैं? तो बिनु करे कर्म विधि नाना, बिना करके कर्म विविध प्रकार के करता है, ये उसकी विशेषता है। अच्छा, अब आइए देखिए, नित्यम, ये नित्य है, जैसे कि आपको बताया था, इसकी नित्यता सिद्ध स्वप्नादि और कोशों के माध्यम से नित्यता इसकी सिद्ध की गई है, प्रतिभिज्ञा से भी इसकी नित्यता सिद्ध है, नित्य है, नित्य है। और विभु है, सब परमात्मा ही है, परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, ऐसा श्रुति कहती है। फिर बोलते हैं कि सर्वगत है, अर्थात सभी देश में है, सभी काल में है, सभी वस्तु है और सभी देश में है, और अति सूक्ष्म है, अव्यय है, खर्च नहीं होता। जैसे कोष आपका, आपकी जो अटैची में पैसे होते हैं, वो घटते बढ़ते रहते हैं। हमारे शरीर में जो अंग हैं, उनका ह्रास विकास होता रहता है। इस प्रकार से परमात्मा में न ह्रास है न विकास है, नित्य है, कूटस्थ है, अनुपायोपजन विकार रहित है। यद भूत योनिम परिपश्यंत धीराः, समस्त भूतों की योनि को अर्थात परमात्मा को धीर पुरुष देखते हैं। धीर है, इसका मतलब जो अधीर है उन्हें देख पाते हैं। देखो, सीधी सी श्रुति की भाषा है, भाव बहुत गहरा है, श्रुतियों की भाषा सरल है, पर भाव उसके बहुत गंभीर हैं। धीर देखते हैं, अधीर नहीं देखते हैं। इसका मतलब धीर भी होते हैं, अधीर भी होते हैं जी। धीर का मतलब है धियम ध्यायन्ति धीरा, ऐसी भी विपत्ति करते हैं, और धीरयति इति धीरा नारायण। तो आप देखिए, ये धीर लोग देखते हैं, तो अधीरता क्या होती है जिसको हम त्याग करके धीर हो जाएं? तो दुनिया को लेकर के हम अधीर हैं, हमको ये मिल जाए, हमको वो मिल जाए, हम यहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, हमारे अंदर बेचैनी है, व्याकुलता है। एक छोटी सी घटना आपको बताऊं। 2 साल पहले मैं एक जगह गया था, गंगा का किनारा था, घोर जंगल था, अनूप शहर और बांध के बीच में एक जगह है ना, तो वहां मैं गया। मैंने एक छोटी सी कुटी थी, सोचा कि कुटी में बैठ करके क्या करेंगे, गंगा किनारे चलता हूं। गंगा के किनारे शीतल शीतल हवा चलती थी, गंगा का जल भी शीतल होता ही है, गर्मी नहीं लगती थी, कूलर का काम कर रही थी। वहां मैं क्या देखता हूं कि ये जो केवट लोग होते हैं, ये वहां तरबूज है, खरबूज है, ककड़ी है, कुमड़ा है, करेला है, विविध प्रकार की वस्तुओं, सब्जियों को और खाने वाली चीजों को लगा रखा है। और क्या देखता हूं कि सुबह आ जाते हैं अपनी रोटी लेकर के, और वो अपने छोटे छोटे बच्चों को भी साथ में ले लाते हैं, तो पानी उसमें डालते हैं। जून की मई जून की चिलचिलाती हुई धूप में वो पानी डालते हैं, और फलों को तोड़ तोड़ करके इकट्ठा करते हैं, ट्रकों फल तोड़ के इकट्ठा करते हैं। ट्रक वहां नहीं आता है जहां वो तोड़ के इकट्ठा करते हैं, ट्रक वहां आता नहीं है इसलिए कि वहां बालू बहुत ऊंची पड़ी रहती है। 1-2-3 मील दूर ट्रक आता है, फिर वहां वो दिन भर तोड़ते हैं चिलचिलाती हुई धूप में, और फिर 3 बजे से ढोना शुरू करते हैं, तो ढोते हैं और फिर वो 5-6 बजे उसको लादना शुरू करते हैं जी। वो 10-11 बजे तक बेचारे सुबह से लेकर के शाम तक इस प्रकार के काम में लगे रहते थे। मैं देखा कि देखो, बंबई में लोग एसी में बैठे और फिर भी परेशान हो रहे हैं, और काम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बैठे हुए हैं, और ये लोग हैं देखो इस चिलचिलाती हुई धूप में, नीचे बालू तप रही है, ऊपर से सूर्य भगवान की प्रखर किरण पड़ रही है, तीसरा ऊपर से शारीरिक श्रम भी हो रहा है, तो वो भी कितने धीर हैं। पर हैं वो दुनिया के लिए जी, उनको न सूर्य का ताप विचलित कर रहा है, न शरीर का थकान भूख व्यास विचलित कर रही है, अपने काम में वो लगे हुए हैं, वो धीर पुरुष हैं। पर वो धूर किस लिए हैं? संसार के लिए हैं, संसार के लिए इतनी तपस्या है उनकी। अभी लद्दाख है, लेह है, यहां अपनी मलेटी पड़ी होगी, यहां के लोग होंगे लेह लद्दाख में, और आपको तो क्या बताएं, अभी हम मैं बुलंदशहर से आया हूं, इतनी ठंडी की हाड़ कांपते हैं जी, और लेह लद्दाख की तो बात ही कहां, जब बर्फ ही पड़ रही हो, वहां मलेटी के लोग रह रहे हैं, और आपको कह दें कि 2 दिन के लिए वहां चले जाओ तो नहीं जाएंगे। वो वहां हैं पर सिर्फ है पैसे के लिए जी। तो जिसके लिए जिसकी धीरता है, उस न, वो चीज ना उसे मिलेगी। इसी प्रकार से इतनी बड़ी तपस्या हमको भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए करना चाहिए, हमारे जीवन में भी सहिष्णुता आना चाहिए। जैसे केवट लोग, बाली लगाने वाले लोग सूर्य की प्रखर किरणों को सहते हैं, लेह लद्दाख के लोग शीत को सहते हैं, यमहीन व्यथन्ते ते पुरुषम पुरुषस्भा। जी, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये जिसको व्यथित नहीं करते हैं, अब आपको बताओ दूसरा तरीका कैसे बता दिया जाए कि नहीं डल्लभ के गद्दे में टेलीविजन लगा करके लेट जाओ, परमात्मा आ जाएंगे। यमिन व्यथन्ते ते पुरुषम पुरुषस्भा, सम सम दुखम सम दुख सुखम धीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। सम दुख सुखम धीरम, यहां भी धीर पद आया है, ऐसे धीर पद को अमृतत्व की प्राप्ति होती है। सहिष्णुता तो जी हमारे जीवन भी कम नहीं है, पत्नी कुछ कह दे, बेटा की हम सह लेते हैं, बेटी की भी सह लेते हैं, पत्नी की भी सह लेते हैं, पर बाबा कुछ कह दे तो सह नहीं होगा। नारायण नारायण। तो आपसे देखिए ये बात आप समझिए कि धीर किसको कहते हैं, कि विषय बाहर की विषय जिसको व्याकुल न कर रहे, प्रारब्ध बस प्राप्त पदार्थ में संतुष्ट रहे, अधीर न हो गए। आपको एक निवेदन करूं कि एक रामायण में एक छोटी सी कथा आती है, शत्रुपा के साथ मनु महाराज तप कर रहे थे, तो ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी बहुत बार आए, क्या कहा कि आप ले लो जो कुछ लेना हो, मांग लो जो कुछ मांगना हो, ये तपस्या करनी छोड़ दो आप, हमको तो अब तकलीफ हो रही है तुम्हारे कष्ट को देख करके, इसे मांग लो जो कुछ मांगना हो। मांगहु बर बहु भांति लुभाए परम धीर, नहीं चलत चलाए, नहीं हमको तुमसे कोई मतलब नहीं है, आप जाओ। यही कथा एक नारायण शिव पुराण में आती है, कहते हैं कि ये जो शिलाद था उसका पुत्र नंदी था,